अगर हम एक ऐसे समाज के बारे में सोचें जहां भगवान को इंसानों की नैतिकता से या उनके अच्छे बुरे कर्मों से कोई खास मतलब ही नहीं है, मतलब उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि इंसानों ने आज उनके लिए भोजन का प्रबंध किया या नहीं।
हाँ, या फिर उनके रहने के लिए शानदार मंदिर बनाया या नहीं।
बिल्कुल, अगर भोजन समय पर मिल गया तो आसमान से बारिश होगी, फसलें लहलहाएंगी, और अगर नहीं मिला तो बस अकाल और तबाही।
और हजारों साल पहले की जो दुनिया थी ना, वो वास्तव में कुछ ऐसे ही थी।
हाँ, और आज हम इसी अजीबोगरीब और थोड़ी डरावनी दुनिया की गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास डॉक्टर जॉन वॉल्टन के मशहूर व्याख्यान सत्र 5 अयूब और प्राचीन निकट पूर्व के सोर्स और काफी विस्तृत नोट्स मौजूद हैं। और आज हमारा जो मिशन है वो ये जानना है कि अयूब की कहानी ने कैसे इस भयानक और पूरी तरह से स्वार्थी प्राचीन सोच को जड़ से उखाड़ फेंका।
हाँ, लेकिन इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक बात जो डॉक्टर वॉल्टन बहुत स्पष्टता से कहते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि बाइबल हमारे लिए जरूर लिखी गई है, लेकिन ये सीधे तौर पर हमारे प्रति नहीं लिखी गई है।
अच्छा, मतलब?
मतलब ये है कि ये ग्रंथ किसी बिजांटीन मध्यकालीन या आज के हमारे आधुनिक एशियाई समाज की उम्मीदों को ध्यान में रखकर नहीं रचा गया था। ये उस प्राचीन संस्कृति की भाषा, उसके प्रतीकों और उसकी अपनी मानसिकता में बात करती है।
ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। मतलब अगर कोई किताब आज के इंसान के लिए है तो वो उसकी भाषा या उसकी संस्कृति में बात क्यों नहीं करेगी? मैं सोच रही हूँ कि ये तो कंफ्यूज करने वाली बात होगी।
देखिए, क्योंकि वो अपनी तत्कालीन प्राचीन संस्कृति में गहराई से रची बसी है, लेकिन मजे की बात यह है कि अपनी इन प्राचीन जड़ों के बावजूद ये इंसानों की उन बुनियादी जरूरतों को संबोधित करती है जो समय के साथ कभी नहीं बदलती।
जैसे दर्द का अर्थ खोजना।
बिल्कुल, अन्याय के बीच उम्मीद ढूंढना या दुनिया में परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझना। अगर किसी इंसान को ये समझना है कि अय्यूब की किताब में असल में क्या चल रहा है, तो उसे पहले उस समय के लोगों के दिमाग में घुसना होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस प्राचीन निकट पूर्व की मानसिकता को समझना होगा। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं एक उपमा देती हूँ।
हाँ, बताइए।
सोचकर देखिए, किसी इंसान की नौकरी ऐसी हो जहां उसका बॉस उसे काम के लिए इनाम या सजा तो देता है, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि
काम के नियम क्या हैं?
हाँ, काम के नियम ही नहीं पता। कोई एम्प्लॉई हैंडबुक नहीं है, इंसान बस अंधेरे में तीर चला रहा है। कुछ ऐसा हो गया जो बॉस को पसंद आ गया तो इनाम मिल गया,
और अगर अनजाने में कोई गलती हो गई तो भयानक सजा।
बिल्कुल। तो प्राचीन काल में इंसानों का अपने देवताओं के साथ जो रिश्ता था, क्या वो बिल्कुल ऐसा ही खौफनाक नहीं था?
खौफनाक और बेहद अनिश्चित, और यही अनिश्चितता उस समय के साहित्य में भी साफ झलकती है। अय्यूब की कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर के पवित्र लेकिन पीड़ित व्यक्ति वाले विषय को समझना होगा।
ये उस समय की कहानियों में बहुत ही आम था। अगर हम उन प्राचीन ग्रंथों पर नजर डालें तो हम इंसानी निराशा और खौफ के एक लगातार बढ़ते हुए ग्राफ को देख सकते हैं।
हाँ, मैंने भी सोर्स में देखा कि कई ऐसी प्राचीन कहानियों का जिक्र है, लेकिन मैं सोच रही थी, क्या वे सभी एक जैसी थी या समय के साथ उनमें कुछ बदलाव आया?
बदलाव तो आया, लेकिन वो बदलाव इंसानों के लिए और भी ज्यादा डरावना था।
अच्छा, कैसे?
सुमेरियन सभ्यता से शुरू करते हैं। एक बहुत पुराना ग्रंथ है जिसे एक इंसान और उसका ईश्वर कहा जाता है। इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति अचानक बहुत बीमार पड़ जाता है और समाज उसे पूरी तरह से बहिष्कृत कर देता है।
बाप रे।
हाँ, और वो इंसान खुद नहीं जानता कि उसने क्या अपराध किया है। वो दर्द में तड़प रहा है, तो वो इंसान करता क्या है? मतलब क्या वो देवताओं से सवाल पूछता है कि उसे सजा क्यों मिल रही है? क्या वो न्याय की मांग करता है?
अरे, सवाल पूछने की तो उस समय के समाज में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
सच में?
बिल्कुल, भगवान से बहस करना असंभव था। कहानी के अंत में उस व्यक्ति को बस उसके पाप बताए जाते हैं, वो बिना किसी तर्क या बहस के उन्हें कबूल कर लेता है और फिर ठीक हो जाता है।
बिना बहस के मान लेता है?
हाँ, क्योंकि इसका दर्शन सीधा सा था। धारणा ये थी कि कोई भी इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता जो पाप रहित हो। अगर कोई पीड़ित है तो इसका मतलब है कि उसने पक्का कुछ गलत किया है, भले ही उसे याद ना हो।
ये तो एक तरह से जन्मजात अपराध बोध वाली बात हो गई, यानी जन्म से ही इंसान अपराधी है, और अगर उस पर कोई मुसीबत आती है तो गलती उसी की है। लेकिन क्या अकादियन सभ्यता तक आते आते इस सोच में कोई नरमी आई?
नरमी बिल्कुल नहीं आई, बल्कि स्थिति और अधिक उलझ गई।
कैसे?
अकादियन सभ्यता के एक ग्रंथ में, जिसे एक इंसान और उसके ईश्वर के बीच संवाद कहा जाता है, व्यक्ति बिना कोई कारण जाने लंबे समय तक पीड़ित रहता है और फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से ठीक भी हो जाता है।
रहस्यमयी तरीके से? मतलब उसे ये भी नहीं बताया जाता कि उसने क्या गलती की थी या उसे किस बात की सजा मिल रही थी?
जी हाँ, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। देवता की मर्जी हुई तो सजा दी, मर्जी हुई तो ठीक कर दिया। इसमें कोई गहरा दर्शन या ईश्वरीय कृपा का आश्वासन नहीं है, यह सिर्फ देवताओं की मनमानी को दर्शाता है।
इसमें तो कोई दर्शन ही नहीं है, ये तो सरासर चंचलता है। मतलब अगर कोई नियम ही नहीं है तो कोई इंसान अपने जीवन की योजना कैसे बनाएगा? उसे कैसे पता चलेगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं?
यही तो सबसे बड़ी त्रासदी थी, और बेबिलोनियन सभ्यता तक आते आते ये त्रासदी अपने चरम पर पहुंच गई।
अच्छा।
मैं ज्ञान के देवता की स्तुति करूंगा नामक एक प्रसिद्ध बेबिलोनियन ग्रंथ है। उसमें कहानी का नायक दावा करता है कि वो पूरी तरह से बेदाग और पवित्र है। वो हर तरह के नैतिक नियमों का पालन करता है। वो समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, फिर भी वो भयानक बीमारियों और दानवों से घिर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि देवता उसे क्या संदेश देना चाहते हैं।
तो क्या उसे अंत में पता चलता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या कोई ईश्वरीय वाणी उसे जवाब देती है?
जवाब के नाम पर उसे सिर्फ एक सपना आता है।
सिर्फ एक सपना?
हाँ, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे देवता मर्डुक को खुश करने के लिए एक विशिष्ट कर्मकांड करना होगा। और जैसे ही वो देवता को खुश करने के लिए वो पूजा पाठ या कर्मकांड पूरा करता है, दानव भाग जाते हैं।
बस इतना ही?
हाँ, इसका साफ मतलब था कि देवता इंसान की समझ से पूरी तरह परे हैं। वे क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, इंसान ये कभी नहीं जान सकता।
यानी इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी नैतिक क्यों ना हो, अगर उसने सही समय पर सही कर्मकांड नहीं किया तो उसकी सारी अच्छाई बेकार है।
बिल्कुल बेकार है।
और मुझे लगता है कि इसी घुटन भरी सोच ने अंततः उस अंतिम ग्रंथ को जन्म दिया होगा जिसका जिक्र वॉल्टन के नोट्स में है, बेबिलोनियन थियोडिसी।
हाँ, वो ग्रंथ प्राचीन दुनिया की सबसे गहरी निराशा का प्रतीक है। उस कहानी में भी नायक पवित्र है, लेकिन उसका परिवार खत्म हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा है, और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो अपने एक दोस्त से बात करता है और पूछता है कि दुनिया में इतनी विषमता क्यों है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कहानी में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई कर्मकांड उसे नहीं बचाता।
तो उस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है फिर?
निष्कर्ष यह है कि देवताओं के उद्देश्य बहुत दूर और रहस्यमयी है। उन्होंने इंसानों को स्वाभाविक रूप से बुरा और पीड़ित होने के लिए ही बनाया है।
क्या बात कर रहे?
इंसानों की नियति ही रोना और तड़पना है, देवताओं ने दुनिया को ऐसे ही बनाया है।
ये सुनना कितना भयानक है। इसका मतलब है कि उस समय के लोग एक निरंतर खौफ में जीते थे।
बिल्कुल।
ये तो ऐसा है जैसे कोई बिना नियमों वाली किताब के एक जटिल बोर्ड गेम खेल रहा हो, जहां हर चाल पर नियम मनमाने ढंग से बदल दिए जाते हैं।
एकदम सही कहा आपने।
इंसान हर सुबह उठकर यही सोचता होगा कि आज पता नहीं कौन सा देवता नाराज हो जाए और उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दे।
लेकिन एक सवाल उठता है, देवता इतने चंचल और असंगत क्यों माने जाते थे? वे इंसानों से चाहते क्या थे?
इस असंगतता के पीछे का जो कारण है ना, वो शायद और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है।
अच्छा।
इसका जवाब उस समय के इंसानों और देवताओं के बीच के लेन देन वाले रिश्ते में छिपा है, जिसे विद्वानों ने द ग्रेट सिम्बायोसिस कहा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है, भगवान इंसानों पर कैसे निर्भर हो सकते हैं? ये व्यवस्था काम कैसे करती थी?
प्राचीन काल के लोगों की धारणा थी कि देवता भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही शारीरिक जरूरतों वाले प्राणी हैं। उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, रहने के लिए घर चाहिए होते हैं और पहनने के लिए कपड़े।
सच में?
हाँ, और शुरुआत में देवता अपना काम खुद करते थे। वे खेती करते थे, नहरें खोदते थे, अपने लिए घर बनाते थे, लेकिन फिर वे ये सब शारीरिक श्रम करते करते बहुत थक गए।
रुकिए, क्या वे सच में मानते थे कि देवताओं को खेती करनी पड़ती है और वे काम से थककर परेशान हो गए थे?
जी हाँ, और इसी थकावट और ऊब का समाधान निकालने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई।
कैसी योजना?
उन्होंने इंसानों का निर्माण किया। इंसानों को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था अपने लिए मजदूरों की एक ऐसी फौज तैयार करना जो कभी खत्म ना हो।
तो इंसानों को इसलिए बनाया गया ताकि वे देवताओं के लिए मजदूरी कर सकें। मतलब इंसानों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व या मूल्य नहीं था?
प्राचीन धारणा के अनुसार बिल्कुल नहीं। इंसान केवल इसलिए बनाए गए थे ताकि वे देवताओं की जरूरतें पूरी कर सकें।
बाप रे,
इंसानों का काम था दिन रात खेती करके देवताओं के मंदिरों में भोजन चढ़ाना, उनके लिए सुंदर कपड़े बुनना और उनके रहने के लिए आलीशान मंदिर बनाना।
अगर इंसान सिर्फ गुलाम थे तो फिर देवता उन्हें जिंदा रखने की परवाह क्यों करेंगे? क्या इस लेन देन में इंसानों को कुछ मिलता भी था?
देखिए, इंसानों को जिंदा रखना देवताओं की मजबूरी थी, क्योंकि अगर इंसान भूख से मर गए या किसी महामारी का शिकार हो गए तो देवताओं को खाना कौन देगा?
ओहो, अब समझी।
इसलिए देवताओं को मजबूरन बारिश भेजनी पड़ती थी ताकि फसलें उगें और इंसान देवताओं को भोजन दे सकें। अगर कोई बाहरी दुश्मन इंसानों पर हमला करता तो देवताओं को इंसानों की रक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर उनके मजदूर मारे गए तो देवता फिर से भूखे मरेंगे।
ये तो पूरी तरह से एक स्वार्थी सौदा है। इस व्यवस्था में तो कोई भी इंसान निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इंसान जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और बारिश सुनिश्चित करने के लिए कर रहा था।
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्राचीन दुनिया में कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, या कह लें फॉर नथिंग, भगवान की सेवा नहीं करता था। सब कुछ लेन देन पर आधारित था। और इसी मानसिकता ने उस समय के न्याय की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था। देवताओं को न्याय पसंद था, लेकिन इसलिए नहीं कि वे बहुत उच्च नैतिक आदर्शों वाले थे।
तो फिर क्यों?
बल्कि इसलिए क्योंकि समाज में शांति बनाए रखना जरूरी था।
अच्छा, मुझे लगता है मैं समझ रही हूँ। अगर समाज में चोरी चकारी होगी, दंगे होंगे या घोर अन्याय होगा तो लोग खेती नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल।
और अगर खेती नहीं होगी तो देवताओं तक खाना नहीं पहुंचेगा।
एकदम सही पकड़े हैं।
तो क्या इसका मतलब ये है कि प्राचीन देवताओं के लिए न्याय कोई नैतिक गुण नहीं था, बल्कि ये सिर्फ मजदूरों की हड़ताल या दंगे रोकने का एक तरीका था ताकि देवताओं का खाना पीना न रुके?
ये एकदम सटीक विश्लेषण है। प्राचीन दुनिया में न्याय का कोई स्वतंत्र नैतिक मूल्य नहीं था। ये सिर्फ व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का एक तरीका था ताकि देवताओं को आराम मिलता रहे। यही वो ग्रेट सिम्बायोसिस था। और इंसान भी इसी शर्त पर खुश थे कि कम से कम उन्हें जीने का मौका मिल रहा है, भले ही गुलामों की तरह।
इस पूरी स्वार्थी, डरावनी और लेन देन वाली व्यवस्था को गहराई से समझने के बाद अब ये साफ होता है कि अय्यूब की कहानी में असली धमाका कहाँ होता है।
हाँ, बिल्कुल।
डॉक्टर वॉल्टन के नोट्स ये स्पष्ट करते हैं कि अय्यूब की किताब इसी प्राचीन दुनिया की पृष्ठभूमि में रची गई है, लेकिन जो ये विचार पेश करती है वे उस समय के हिसाब से किसी बौद्धिक और धार्मिक विस्फोट से कम नहीं थे।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अय्यूब खुद एक इजरायली नहीं था।
अच्छा।
हाँ, वो ऊज नाम की जगह का रहने वाला था, लेकिन पूरी किताब स्पष्ट रूप से इजरायली नजरिए से लिखी गई है। ये उन सभी प्राचीन मान्यताओं के खिलाफ एक सीधा विद्रोह था जिनकी हमने अभी चर्चा की।
इस विद्रोह का पहला बड़ा बिंदु क्या था, क्योंकि उस समय तो हर कोई कई देवताओं की पूजा करता था, है ना?
पहला बिंदु यही था, बहुदेववाद का पूरी तरह से खंडन। अय्यूब अध्याय 31 की आयत 26 में वो साफ तौर पर कसम खाता है कि उसने कभी सूर्य या चांद की पूजा नहीं की। उस समय के आसपास के समाजों में सूरज और चांद की पूजा करना सबसे आम बात थी, क्योंकि वे दिखाई देते थे और विश्वसनीय लगते थे। लेकिन अय्यूब इसे एक गंभीर अपराध मानता है। ये केवल एक इजरायली मानसिकता में ही संभव था।
ये अपने आप में उस समय के समाज से सीधा टकराव था। और मैंने ये भी देखा कि जब अय्यूब पर भयानक संकट आते हैं, उसके बच्चे मारे जाते हैं, उसकी संपत्ति छिन जाती है, तो वो इस बात की खोज में नहीं निकलता कि पता नहीं बारिश का देवता नाराज है या फसल का देवता।
हाँ, वो अलग अलग देवताओं को खुश करने की कोशिश नहीं करता।
बिल्कुल।
और यहीं से दूसरा बड़ा विद्रोह सामने आता है। वो अन्य देवताओं से कोई मदद नहीं मांगता। उसका सारा ध्यान केवल एक ईश्वर पर केंद्रित है। उसे इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि देवताओं के किस समूह ने उसके खिलाफ साजिश रची है। लेकिन तीसरा और सबसे क्रांतिकारी विद्रोह है उसकी सच्ची धार्मिकता की धारणा।
प्राचीन दुनिया में जैसा कि हमने देखा, अगर किसी ने सारे कर्मकांड सही से कर लिए तो वो पवित्र माना जाता था। लेकिन अय्यूब की धार्मिकता कर्मकांडों पर नहीं बल्कि वास्तविक और स्पष्ट नैतिकता पर आधारित है।
एकदम सही। वो जानता है कि उसका आचरण नैतिक रूप से सही रहा है। उसने गरीबों की मदद की है, न्याय का साथ दिया है। लेकिन इस किताब का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ग्रेट सिम्बायसिस की पूरी नींव को ही हिलाकर रख देता है। जब शैतान ईश्वर के सामने अय्यूब पर सवाल उठाता है तो वो ये नहीं पूछता कि अय्यूब ने कौन सा कर्मकांड छोड़ दिया है या उसने मंदिर में कितना दान दिया है। वो पूछता है, क्या अय्यूब बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर की सेवा करता है?
बिना किसी स्वार्थ के, ये सवाल तो उस प्राचीन दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था।
बिल्कुल नहीं,
क्योंकि उस समय तो हर कोई सिर्फ इसलिए सेवा कर रहा था ताकि उसे बारिश और सुरक्षा मिल सके। ये तो पूरी उस प्राचीन अर्थव्यवस्था पर ही एक बहुत बड़ा हमला था।
यही तो पूरी किताब का केंद्र बिंदु है। क्या कोई इंसान बिना किसी फायदे के सिर्फ इसलिए ईश्वर की सेवा कर सकता है क्योंकि ईश्वर उसी के लायक है? ये सवाल प्राचीन लेन देन वाली मानसिकता को पूरी तरह से नकार देता है और अय्यूब के 22वें अध्याय की 3री आयत इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है कि परमेश्वर को इंसानों से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ईश्वर को ना तो हमारे खाने की जरूरत है ना हमारे द्वारा बनाए गए भव्य मंदिरों की।
अगर ईश्वर को इंसानों से किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वो बॉस और नौकर वाला पूरा सौदा ही खत्म हो जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन अगर ऐसा है तो अय्यूब के दोस्त पूरी कहानी में कर क्या रहे थे? वे तो लगातार अय्यूब को सलाह दे रहे थे। तो क्या अय्यूब के दोस्त उस प्राचीन सेल्फ हेल्प गुरुओं की तरह थे जो कह रहे थे कि अरे अय्यूब बस ये कर्म कांड करो और अपना खोया हुआ सामान वापस पाओ?
हाँ, वे दोस्त प्राचीन निकट पूर्व की उसी रूढ़ीवादी सोच का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
अच्छा,
उनका पूरा जोर इसी बात पर था कि अय्यूब ने जरूर कोई गलती की है, कोई कर्म कांड ठीक से नहीं किया है और उसे बस किसी तरह देवता को शांत करना है। वे मानकर चल रहे थे कि ईश्वर को कुछ ऐसा चाहिए जो अय्यूब ने नहीं दिया है। उनके लिए धर्म का मतलब सिर्फ अपना सामान वापस पाना था, लेकिन अय्यूब उनकी इस मानसिकता को पूरी तरह से खारिज कर देता है।
अगर अय्यूब ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसे किसी कर्मकांड के जरिए ईश्वर को खुश करना है तो फिर वो आखिर चाहता क्या था? वो इतने भयानक कष्ट में था फिर भी उसने देवताओं को शांत करने का आसान और आजमाया हुआ रास्ता क्यों नहीं चुना?
क्योंकि अय्यूब के लिए असली मुद्दा ये था ही नहीं कि उसे अपना खोया हुआ सामान वापस चाहिए। डॉक्टर वॉल्टन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस पूरी किताब में कर्मकांडों के माध्यम से देवता को शांत करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अय्यूब सिर्फ ये समझना चाहता था कि परमेश्वर का न्याय काम कैसे करता है।
वो जवाब मांग रहा था। वो ईश्वर को किसी मंदिर में भोग लगाकर खुश नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उन्हें एक अदालत में बुलाना चाहता था। वो चाहता था कि ईश्वर स्पष्ट करें कि उनकी नीतियां क्या हैं।
हाँ,
ये तो उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय साहस की बात रही होगी। एक इंसान जो भगवान से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी नीतियां समझनी है।
ये पूरी प्राचीन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सोर्स में ये भी कहा गया है कि प्राचीन निकट पूर्व का साहित्य इस किताब में एक विपरीत पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया गया है,
यानी एक फॉइल की तरह।
बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि लेखक ने उन सभी पुरानी कहानियों और मान्यताओं का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि वे अंदर से कितनी खोखली थीं।
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज का कोई फिल्म मेकर किसी लोकप्रिय सुपर हीरो कहानी के सभी घिसे पिटे फॉर्मूलों का इस्तेमाल करें।
हाँ, सिर्फ ये साबित करने के लिए
कि असली नायकत्व वो बिल्कुल नहीं है जो हम पर्दे पर हमेशा से देखते आ रहे हैं।
वो जानबूझकर उन पुरानी चीजों को दिखाता है ताकि उन्हें गलत साबित कर सके।
बहुत ही बेहतरीन उपमा है। और इस पुरानी सोच के खोखलेपन को साबित करने का सबसे बड़ा तरीका ये था कि अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो अय्यूब को शुरुआत में ही निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। प्राचीन दुनिया के किसी भी इंसान के लिए ये बात हजम करना असंभव था,
क्योंकि अगर अय्यूब निर्दोष है और फिर भी कष्ट सह रहा है तो इसका मतलब है कि कष्ट सहने के जितनी भी प्राचीन कारण थे,
कि तुमने कोई पाप किया होगा या कर्मकांड में कोई चूक हो गई होगी,
वे सब गलत साबित हो जाते हैं।
बिल्कुल,
और इसी मोड़ पर आकर ये किताब मानव स्वभाव या ईश्वर की प्रकृति के बजाय दुनिया में परमेश्वर की नीतियों और उनकी ईश्वरीय बुद्धिमत्ता पर केंद्रित हो जाती है। ये किताब ये स्थापित करती है कि ईश्वर इस संसार को किसी स्वार्थी जरूरत के लिए नहीं चलाते। उनका न्याय इसलिए नहीं है कि उन्हें इंसानों से भोजन चाहिए, बल्कि यह उनकी अपनी अथाह बुद्धिमत्ता और संसार को चलाने की नीति का हिस्सा है, जिसे इंसान पूरी तरह से नहीं समझ सकता लेकिन जिस पर वो भरोसा कर सकता है।
इस पूरी चर्चा को गहराई से देखने के बाद यह समझना मुश्किल नहीं है कि एक ऐसा ईश्वर का विचार कितना क्रांतिकारी था।
हाँ।
एक ऐसा ईश्वर जो चंचल या अनसंगत नहीं है, जो सिर्फ इसलिए न्याय नहीं करता क्योंकि उसे अपना भोजन सुनिश्चित करना है। यह जानकर किसी भी इंसान को कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत मिलनी चाहिए कि ब्रह्मांड के रचयिता के साथ उसका रिश्ता उस प्राचीन भूखे बॉस और डरे हुए नौकर वाले सौदे जैसा नहीं है।
ये वास्तव में एक बहुत बड़ी मुक्ति थी। इंसानों को अब अंधेरे में तीर नहीं चलाने थे।
बिल्कुल,
उन्हें ये जानकर शांति मिल सकती थी कि उनका ईश्वर बुद्धिमत्ता और स्पष्टता से काम करता है और उसे इंसानों की सेवाओं की कोई भूखी प्यासी जरूरत नहीं है। रिश्ता लेन देन का नहीं बल्कि भरोसे का है।
तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब हम सोच सकते हैं कि हम उस प्राचीन दुनिया से बहुत आगे निकल आए हैं और हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, पर क्या हम सच में उस लेन देन वाली मानसिकता से पूरी तरह बाहर आ पाए हैं?
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।
आज के समाज में भी अगर हम देखें तो कोई इंसान कितनी बार अपनी सफलताओं और दुखों को एक व्यापार की तरह देखता है। हम मन ही मन सोचते हैं कि मैंने सब कुछ सही किया है, मैंने दान दिया है, किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होना चाहिए।
हाँ, या फिर अगर मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है तो पक्का मैंने ऊपर वाले को किसी बात पे नाराज कर दिया।
बिल्कुल, अगर कोई इंसान आज अय्यूब की तरह अपने आसपास की दुनिया की इस लेन देन वाली मानसिकता को पूरी तरह से नकारने की हिम्मत करे तो उसे अपने जीवन, अपनी सफलता और अपने कष्टों के बारे में कौन सी पुरानी धारणाओं को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा? क्या हम सच में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इनाम की उम्मीद के सिर्फ अच्छे और नैतिक बने रहने के लिए तैयार हैं?
सोचने वाली बात है।
आज की यह गहरी चर्चा हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। स्रोतों और विचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार।